بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أئمة الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين المقدومين. الحمد لله رب العالمين. ہم نے گزشتہ جو اسٹڈی سرکل کا جو سیشن تھا اس میں ہم نے شہید مرزا مطہری کی کتاب انسان کامل میں کچھ اہم موضوع ڈسکس کیے، جن میں ایک تو انسانیت تھا، اور پھر انسانیت کی درد اور تکلیف کا احساس تھا. پھر اسی موضوع کو ہم نے جو انسانی قدریں ہیں ان کو مادی عینک سے اس کو پرکھنا شروع کیا کہ بھائی جو مادی آج کی دنیا میں، کیونکہ انسانیت اور ہیومینٹی کی بہت باتیں ہیں، اسی بنیاد پر ایک یونائٹڈ نیشن نے بھی ایک ادارہ بنایا ہے ہیومن رائٹس کے نام سے، اس کے پھر برانچز بھی ہیں. جی، تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ انسانیت جو مادی حسابات ہیں، مادی جو ایک کلکولیشنز ہیں، اس کے اندر انسانیت کیا چیز ہے. پھر ہم نے دینی اعتبار سے اس موضوع کو ڈسکس کیا، اور یہ ہم سمجھ گئے کہ دین کے اعتبار سے یہ انسانیت کی درد اور تکلیف کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی ایک شارٹ فارم ہم نے بنایا اور بتایا شہید نے ہمیں کہ تمام جو انسانی اعلی کوالٹیز یا قدریں یا ویلیوز ہیں ان کا جو شارٹ فارم ہے وہ یہی درد ہے. اصل میں البتہ یہ جو درد ہے اس کی اپنی ایک خاص تعریف ہم نے بیان کی، جس میں یہ ہم نے کہا جی کہ سب سے اہم ترین جو درد ہے وہ درد الہی ہے. درد الہی سے مراد ایک انسان با ایمان اور ایک انسان جو کہ خدا اور وحدانیت الہی پر ایمان رکھتا ہے، اس کا سفر ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ درد کا سفر کیسے شروع کرتا ہے وہ، اور آج ہم اسی سے آگے کنٹینیو کریں گے کہ اسی درد کے سفر کو لے کر کچھ جو ہے پہلو پہ شہید ڈسکس کریں گے. پھر اس سلسلے میں دینی جو ہمارے سورسز ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح غیر دینی جو مکاتب فکر ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں. پھر دینی مکاتب فکر کے اندر مذہبی مکاتب فکر میں جو مختلف تشریحات ہیں اس کو لے کر کہ کوئی کسی طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے، اس کو بھی شہید ڈسکس کرتے ہیں. تو شہید جو ہے فرماتے ہیں، ایک عبارت ہے شہید کی کتاب کے، میرے پاس جو بک ہے وہ پیج نمبر 108 ہے، ممکن ہے آپ لوگوں کے پاس 105-106 یا اس کے آس پاس میں ہی ہوگا، کوئی زیادہ ڈیفرنسز نہیں ہے پرنٹنگ جو مختلف پرنٹنگ ہوئے اس میں. وہ فور پیغمبروں کی آمد کے سلسلے میں کچھ پوائنٹس بیان کرتے ہیں. یہ عبارت بڑی امپورٹنٹ ہے تو میں پڑھنا چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ پیغمبر اس لیے نہیں آئے کہ وہ بندوں کو خدا کے نام سے آشنا کریں اور اس کی عبادت کرنا سکھائیں. بہت ہی اہم عبارت ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس کے ظاہری جو ترجمہ ہے صرف اس میں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِتَعْرِفُونَ مثلاً. شہید اس کی اصل تفسیر کی طرف جا رہے ہیں، فرماتے ہیں دیکھیں وہ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ بندوں کو خدا کے نام سے آشنا کریں اور کہیں جی یہ خدا ہے، اس کا نام یہ ہے، یہ واحد ہے، یہ احد ہے، یہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، بس اس کی عبادت کرو. کیوں کہ یہ چیز تو ہر انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، تو لہٰذا اس کو بتانے کی کوئی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اسپیشلی کچھ نبی آ جائیں اوپر سے. تو پھر اصل ہدف کیا تھا؟ کہہ رہے ہیں بس اس لیے آئے کہ ٹیڑے راستوں کو سیدھے راستے سے الگ کر دکھائیں. یہ بہت اہم ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہر دور میں ہر جگہ، کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا ذہین سمجھدار ہی کیوں نہ ہو، کتنا ایکسپیرینس وہ رکھتا ہو، جنریشن ٹو جنریشن ایکسپیرینس اور نالج اس کو ٹرانسفر ہو چکی ہو، لیکن اس کے باوجود جب الہیات اور مذہبیات اور اس دنیا اور آخرت کی سعادت کی جب بات آئے گی تو لا محالہ اس کو یہاں پر ضرورت پیش آئے گی کہ اس کو گائیڈنس کہیں سے ملے جو اس سے زیادہ سپیریئر ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس نالج ہے، اس سے زیادہ ان چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں جیسے کہ انبیاء ہیں. اسی لیے نبیوں کی آمد کی جو ایک فلسفی بیان کی اس میں قرآن مجید کی آیت میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ، तेरे नबी वो सिखाने आए हैं जिसो जिसको यानी खुद तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है कि तुम अकेले उसको सीखो। इवन जनरेशन टू जनरेशन एक्सपीरियंस के थ्रू सारी नॉलेज को भी इकट्ठा कर लो तो भी वो तुम नहीं पहचान सकते हो। अल्लामकुम मालम तकुन, आयतुल्ला जवादी आमली एक जुमला कहते हैं कि ये नबियों की तख्लीक है, असल में क्रिएटिव काम है उनकी तरफ से। लिहाजा मेन फिलोसफी क्या थी पैगंबरों के आने की? टेढ़े रास्तों को सीधे रास्ते से अलग कर दिखाएं। फिर वो कुछ शायराना और आरिफाना गुफ्तगू करते हैं, कह रहे हैं कि इसलिए नहीं कि आपको मजनू से कहना चाहिए, जनाब आपने कमाल मुतलक की पहचान में गलती खाई है और ये ख्याल करते हैं कि लैला कमाल मुतलक है। असल में ये बहुत ज्यादा बहस आती है लैला और मजनू और इन चीजों को अरफान इरफान की बहसों में बहुत ज्यादा, जुलेखा और यूसुफ, क्योंकि ये इश्क मजाजी था, एक ऐसा लगाव कि उस इंसान टू इंसान से मोहब्बत का एक ऐसा लेवल कि उस लेवल में कुछ लोग एक एग्जाम्पल बनकर सामने आ गए कि वो उन्हें सुबह और शाम उनके सामने सिर्फ और सिर्फ उनका महबूब हुआ करता था, और हत्ता उनको कोई चीज भी दे दें तो वो अपने महबूब के ही ख्याल से उस चीज को याद करते थे। अगर जैसे वो कहानी है कि मजनू ने आमरी के हाथ में जब तख्ती पकड़ाई तो उसने लैला लिखना शुरू कर दिया, और लैला के हाथ में दिया तो मजनू लिखना शुरू। यानी मतलब क्या है कि वो समझते हैं कि कायनात में जो कमाल मुतलक है वो लैला है। मजनू ये समझता है, लैला समझती है मजनू कमाल मुतलक है। हकीकत में ये क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को कमाल मुतलक समझते हैं, दरअन हाल की ये कोई कमाल मुतलक नहीं है, क्योंकि कमाल मुतलक की सबसे बड़ी सिफत यह है कि वो फानी नहीं है, वहां पर एक्सपीरियंस यानी एक्सपायरी डेट नहीं रखती है वो, और फिर वो कामिल है तो हर एतबार से कमाल है। मसलन लैला में क्या क्वालिटीज हो सकती हैं? हो सकता है उसके सिफात अच्छी हों, उसमें खसलतें अच्छी हों, इसलिए आप उसको कमाल समझ के उसके आशिक बने हैं। तो उससे ज्यादा हाई लेवल की सिफात रखने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं। फर्ज करें कि नबियों में सिफात हमने देखी इसलिए आशिक हुए, तो नबियों से ऊपर एक सिफात मुतलक रखने वाले वाला वजूद है, वो खुदा है। तो असल में ये क्या है कि जो भी किसी कमाल मुतलक कमाल का को पसंद करता है या आशिक होता है, असल में वो गलत डायरेक्शन पर जा रहा होता है, क्योंकि उसे वो सिफात की इंतहा उसमें नजर आई है, जबकि वो इंतहा नहीं है बल्कि असल में सिफात औलिया या कदरू या जो भी आप कमाल नाम दे दें, कमाल मुतलक सिर्फ अल्लाह की जात है। तो उसे अल्लाह की जात की तरफ असल में डायरेक्ट डायरेक्शन उसकी होनी चाहिए थी। फिर एक और बात कह रहे हैं कि इसी तरह आप उस वक्त ख्याल करते हैं कि मकाम ओहदा कमाल मुतलक है, एक पोजीशन समझते हैं कि ये कामिल हो जाऊंगा, इससे मैं सक्सेसफुल मैन बन जाऊंगा। एक वक्त आप ख्याल करते हैं जिंदगी कमाल मुतलक है, अगर मेरी सेहत रहेगी सलामती रहेगी तो ये कमाल मुतलक है, अगर मेरा कद और काट और शक्ल और सूरत और डिजाइनिंग और बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह भी ऐसा हो जिसको आज की दुनिया के पैमानों में हुस्न के अवार्ड दिए जाएं तो मैं समझूंगा मैं कमाल है, जबकि ये कमाल नहीं है। गोया आप कमाल मुतलक के अलावा कोई चीज नहीं चाहते। बस यानी इससे एक चीज जो इंकशाफ हो रहा है वो ये हो रहा है कि हर इंसान कमाल मुतलक चाह रहा है, यानी कमाल मुतलक ही चाहता है। यानी अगर उससे ओहदा तो उससे कहें कहेंगे कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन मेरा हो, मेरी मेरे पास हो। अगर उसको कहें कि आपकी जाहिरी शक्ल और सूरत तो कहें जी सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा बॉडी स्ट्रक्चर, ये वो सब कुछ मेरे पास हो, घर सबसे अच्छा हो मेरे पास हो, गाड़ी सबसे अच्छी मेरे पास हो, शोहर सबसे अच्छा मेरे पास हो, बीवी सबसे, बच्चे मेरे सबसे अच्छे, लेकिन हर जगह कमाल ढूंढ रहा होता है। गोया आप कमाल मुतलक के अलावा कोई चीज नहीं चाहते हैं, दरहकीकत आप गलती खाते हैं, गलती कर रहे हैं, और नोए बशर के रहनुमा इसलिए आए हैं कि वो इन गलत फहमियों से निजात दिलाएं। बस नबी यहाँ पर क्या करना, नबी का काम क्या है, ये जो हम झूठे कमाल मुतलक और परफेक्ट और परफेक्शंस की तरफ हम तलाश करके समझते हैं कि जिंदगी में ये चीजें हों तो हम कामिल हैं और कमाल मुतलक हमें हासिल हुआ, ये जो गलती हम कर रहे होते हैं उस गलती को दुरुस्त करना चाहते हैं और गाइडेंस देना चाहते हैं, असल में जो नबियों का काम है वो ये है। फिर वो कहते हैं इंसान का दर्द, इंसान का शोक वो खुदाई दर्द है। असल में ये एक दर्द है ना जिसके पीछे इंसान तलाश कर रहा है, यानी यही जो पोजीशन का हुसूल, बेहतरी, बेहतर लाइफ की तलाश, ये सब क्या है? एक तकलीफ है, दर्द है जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं। किसी की रफ्तार सुस्त है, किसी की रफ्तार वो है, कोई इसके लिए गलत रास्ते ढूंढता है, कोई बेशक सही रास्तों के अंदर ही तलाश कर रहा होता है, लेकिन बलाखरा ये एक चीज है जो जो है उसके पीछे हम भाग रहे होते हैं, और आशिकाना अंदाज है, शोक है इसके अंदर। लिहाजा क्या करते हैं, अगर वो इसे पहचान, यानी अगर गलत फहमियों के पर्दे उसकी आंखों के सामने से हट जाएं और उसका माशूक उसे मिल जाए, तो वैसी ही आशिकाना है बातें करने लगे, जैसी बातों की मिसाल हम इमाम अली अलैहि सलाम में देखते हैं। कह रहे हैं कि अगर जो है हम ट्रैक हमारी सही हो, ट्रैक हमारी हमारी सही हो जाए, तो कह रहे हैं कि ये जो हमारा दर्द है और ये जो कमाल की तलाश और इश्क और शोक और जज्बा है, कह रहे हैं इसकी डायरेक्शन हमारी ठीक हो जाएगी। जब डायरेक्शन ठीक होगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट के एग्जाम्पल के तौर पर मिसाल दे दी है, मौलाए कायनात की मिसाल देते हैं। कहते हैं जैसे जान मसल मौला अली अलैहि सलाम की जो मिसाल है हमारे सामने है, कुरान मजीद की फिर एक आयत बयान करके कहते हैं कि मौलाए, वैसे मौलाए कायनात के हवाले से ये एक बड़ी जो है मशहूर वो है कि जैसे आगे खुद मौला भी बयान फरमाते हैं, रोहबानुल्लैल व उसुदुन्नहार, रात के राहिब और दिन के शेर हुआ करते थे। कुरान मजीद की आयत में कहते हैं जान लो कि फकत और फकत एक चीज से दिल को सुकून हासिल हो सकता है। सुकून कब मिलता है? इंसान जब अपने मतलूबा चीज तक पहुंचता है। मतलूबा चीज तक क्यों पहुंचना चाहता है? क्योंकि उस चीज को वो कमाल समझ रहा होता है। लिहाजा जब वो उसे कमाल समझता है तो समझता है मुझे अगर ये मिलेगा तो मैं सुकून पालूंगा। मसलन सबसे अच्छी जॉब मेरे पास होगी तो मैं सुकून पालूंगा, या सबसे अच्छी मेरे पास घर होगा तो मैं सुकून पालूंगा, क्योंकि वो घर और जॉब को कमाल समझता है, कमाल होना, कमाल मुतलक समझता है। मैं बाजों का सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्टें देखता हूँ बाज लोगों को कि उन्हें अगर यूरोप में रहने के कागज मिलते हैं तो वो उसको इस अंदाज से एक्सप्रेशन करते हैं जैसे कमाल हासिल हुआ है उन्हें, या अगर उनके पास नए मॉडल की गाड़ी आ जाती है तो वो समझते हैं कि वो कमाल हासिल कर चुके हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो सुकून नहीं उसे मुयसर आ रहा होता है। तो कुरान मजीद ने कहा है कि देखें ये कमाल नहीं है ये सारे के सारे, इससे आपकी जो इस्तेराब और बेचैनी है वो कम्प्लीटली खत्म नहीं होने वाली, टेम्परेरीली हो सकती है। कब ये खत्म हो सकती है? खुदा के साथ राज और नियाज करना, यानी वही फिर ये कि कमाल मुतलक की तलाश में जाना। कमाल मुतलक खुदा की जात है, वहां पर नक्स नहीं है, कमी नहीं है। अच्छा, यहां तक हमारी बहस ये आ गई। मैंने जैसे आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया था, तो मैं चाहूंगा कि एक क्विकली इसकी जो है एक क्विक तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को अर्ज कर दूं जो अगली बहस के अंदर है, उसका एक कंक्लूजन है, फिर इसके बाद शरीफ डिस्कस करते हैं उन चार सफरों के बारे में जिसमें जिसको हमने गुज़श्ता नशिस्त में भी डिस्कस किया था कि मादी जो मेटेरियलिस्टिक जो मुख्तलिफ इज़म्स हैं वो, या इलाहादी भी हम कहते हैं इसको, जो उर्दू में टर्मिनोलॉजी यूज होती है, मादी या इलाहादी भी कहते हैं, इलाहादी मतलब इलाहाद, गैर गैर इलाही, उन मकातिब फिक्र के अंदर इंसानियत के दर्द और एहसास और तकलीफ और इंसानियत के लिए जज्बा रखने की फिलोसफी जो बयान की जाती है, उस फिलोसफी के बयान के अंदर खुदा नहीं होता है, लेकिन जो हमें हमारी दीनी तालीमात जो चीज हमें दे रही होती हैं उसमें क्या है, इंसान का सफर मखलूक से शुरू होता है खुदा की तरफ। पहला मरहला, क्या खुदा की तरफ जो सफर वो करता है खुदा के पास पहुंचकर वहीं का होकर रह जाता है, वहीं पे ठहरता है, जैसे कि सूफियों का नजरिया है। बहुत सारे सूफिस्ट ये कहते हैं बस खुदा तक पहुंचा तो आप फना हो जाएं, खुदा की जात में गुम हो जाएं, अल्लाह का बंदा बन जाएं और तारिकु दुनिया, ये जो गारों में कुटियाओं में पीर फकीर बाबा सड़कों पे नंगे फिर रहे होते हैं या गंदगी में रहते हैं, वो कहते हैं अल्लाह वाले लोग हैं। अल्लाह वाले ये नहीं है, कुरान में इस तरह के कोई अल्लाह वाले नहीं है, ये फ्रॉडी हैं, सारे धोखेबाज हैं, ये खुद भी नहीं जानते, खुद को धोखा दे रहे होते हैं। क्योंकि ये नहीं कहा है कि आप खल्क को छोड़कर खुदा के पास पहुंचो, तो खुदा के होने का मतलब ये है कि वहीं का रहो, एक मखलूक को छोड़ने का मतलब ये है कि कायनात में खुदा की नियमतों को ही छोड़ दो। ये गलत परसेप्शन है जो हमारे पास ज्यादा है बरसगीर में, बस ये कमाल इंसानी नहीं है, खल्क को छोड़कर खालिक के पास पहुंचना और फिर जो है खालिक का होके रह जाना और मखलूक को को छोड़ देना मतलब तारिकु दुनिया हो जाना, और इस मीनिंग्स में तारिकु दुनिया लेना, ये क्या है? ये असल में गलत इंटरप्रिटेशन है, सूफीज्म है ये असल में, शहीद मुतारी ये कहते हैं। तो फिर वहां पर क्या है, कहते हैं कि इंसान खुद खुद को मसलन खुदा की तरफ बढ़े और खुदा के पास पहुंचे, जब वो खुदा के पास पहुंचता है तो खुदा कहता है वापस लौट के जाओ मखलूक की तरफ। क्यों? इसलिए कि सैरु मिनल खल्की इलल हक है वा फिल हक है, उसके बाद सैरु मिनल हक इलल खल्क है। अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदे तो नबी थे, अंबिया थे, उनको क्यों भेज रहा है फिर नीचे जमीन में? खल्क के पास क्यों भेजा, मखलूक के पास क्यों भेजा? उससे बड़ा कोई सूफी हो सकता है? उससे बड़ा कोई वलीउल्लाह हो सकता है? पैगंबर से बढ़कर हो सकता है? इमामों से बढ़कर हो सकता है? वो तो वहां अनवार में से थे, उनको खल्क के पास भेजा है वापस अल्लाह ताला ने। इसलिए कि खालिक को इसकी जरूरत नहीं है, मखलूक को इनकी जरूरत है। खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि जो मादी लोग मेटेरियलिस्टिक सोच के जो लोग कहते हैं कि इंसान सिर्फ इंसानों का दर्द रखे और इंसानियत के लिए काम करे और इंसानों के काम आए और इंसानों को बचाने के लिए करे, इंसान के लिए करे, मखलूक के लिए करे, मखलूक के लिए करे, खालिक से बिल्कुल नजरें चुराते हुए खालिक के वजूद का इनकार करते हुए, ये गलत है। मखलूक की खिदमत करनी है खालिक के हुसूल के बाद, खालिक तक पहुंचने के बाद, बंदे खुदा बनने के बाद खुदा के बंदों के काम आना है। शॉर्ट फॉर्म जो है ये है, यानी मखलूक बगैर खालिक कोई माने नहीं रखती है, खालिक बगैर मखलूक भी कोई मीनिंग्स नहीं रखते हैं, ना सूफीज्म ना मटेरियलिज्म, दोनों चीजें हम नहीं हैं। बस खुद को जो बचाते हैं वो लोग मखलूक को भी बचा सकते हैं। अब आप देखें हमारे नबियों को हम उठा के देखते हैं, नबियों की मिसालें नहीं देते, लोग कहते हैं नबी है तो फिर हमारे लिए हम क्या करेंगे उससे, मिसालें देते उलेमा की। आप इमाम खुमैनी को देखें, इमाम खुमैनी खुद को बचा चुके थे। मतलब क्या, मतलब खुद को बचाने का मतलब क्या है? खुद से सफर करके खालिक तक पहुंचे थे, मतलब क्या है इसका? मखलूक से सफर करके खालिक तक रसाई हासिल की थी, क्या मतलब है? यानी खुद गर्जी से निकले थे, नफ्स अमारा से बाहर निकले थे। ये जो सैरु मिनल खल्क इलल हक है, इसका मतलब ये है खुदगरज ना हो इंसान, क्योंकि हैवान भी खुदगरज है, एक जानवर भी अपने मसाइल को तो हैंडल करता है। खुद नफ्स अमारा का शिकार ना हो, फितरत की गुलामी और यानी तबीयत की गुलामी में ना रहे, नेचर जिसको हम कहते हैं, दूसरे इंसानों की गुलामी भी बिना रहे, दूसरे इंसानों को अपना आका और मौला और मुश्किल कुशा वो खुदा ना समझे, उससे भी बचा रहे। जो खुदगर्जी नफ्स अमारा से बचता है, दूसरे इंसानों की गुलामी से बचता है और खालिक तक पहुंचता है, वही मखलूक की भी बेहतर, इंसानियत का दर्द भी उसके पास बेहतर होगा। शहीद मुतारी ये कहना चाह रहे हैं, और वो लोग इंसान के नजात दहंदा भी बन सकते हैं। क्यों? इसलिए कि वो गरज और मरज से ये खिदमत नहीं अंजाम दे रहे हैं, शोहरत के लिए नहीं कर रहे, पॉपुलरिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो रजाए खुदा के लिए करते हैं। इसीलिए हमें कहा है, हर काम में कहा कि खुदा की रजा के लिए काम करना। लिहाजा इंसान का इंसान से नजात एक, इंसान का खुद से नजात दो, ये दो बैरियर जो भी तोड़ता है, इसी दो बैरियर को तोड़ने का नाम क्या है? सैरु मिनल खल्की इलल हक है, इरफान की जबान में। खुदगर्जी और नफ्स अम्मारा और दूसरे इंसानों की गुलामी से नजात हासिल करके खालिक को कबूल करके खालिक के बंदे बनना और फिर मखलूक के खालिक की खिदमत करना, ये क्या है? ये है असल रास्ता जिसके बारे में हमने वो किया है। आखिरी कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। एक कमाल इंसानी के लिए एक अहम नुक्ता जो हमारे मुस्लिम माशरे में है वो ये है, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, वो ये है कि तमाम जो वैल्यूज हैं या कदरें हैं या सिफात हसना हैं सिंपल लफ्जों में, उनको इक्वल और बराबर ऊपर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले भी शहीद ने इशारा किया है, अब अगले चैप्टर में भी आगे जाके भी डिस्कस करते हैं जब वो दूसरे मकातिब और इजम्स के थ्योरीज और नजरियात को लेके आएंगे, लेकिन यहां पर भी वो डिस्कस करते हैं। तमाम सिफात को मसावी बढ़ना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक सिफत बढ़ाती जाए दूसरी सिफत को घटाया जाए। यानी मिसाल देते हैं कि ऐसा अगर नक्शा बनाया जाए एक इंसान के अंदर मौजूद सिफात का, तो एक ऐसा इंसान बन जाए जिसका कान बहुत बड़ा है, नाक बहुत छोटी है, उसके हाथ बिल्कुल छोटे हैं, पांव लंबे लंबे हैं। यानी हमारी अखलाक की जो सिफात हमारे अंदर होनी चाहिए वो इक्वल आनी चाहिए। मसलन एक आदमी बहुत अच्छा है, इबादत का बड़ा पाबंद है, हराम हलाल का बड़ा पाबंद है, लेकिन इंसानी दूसरे इंसानों के हुकूक की रियायत नहीं करता है, फैमिली के हुकूक की रियायत नहीं करता है, उसके पास बातिल और जालिम से लड़ने का या उसके मुकाबले में डट जाने का या मजलूम की हिमायत का अंसुर नहीं है। दूसरे अल्फाज में जाती इबादात में बहुत ऊंचा गया है, और नमाज शब पढ़ता है, मुस्तहबात को छोड़ता नहीं है, कपड़े और जूतों के इंतखाब में भी मुस्तहब चीजें ढूंढता है। लेकिन उसको कहें जनाब उधर एक मजलूम इंसान पर जुल्म हो गया, तो कहेंगे यार मेरा नहीं, मैं मुझे सियासत में कुछ नहीं पढ़ना, मेरा ताल्लुक नहीं है इससे। ये वही इंसान है, कार्टून नुमा इंसान, अखलाकी लिहाज से कार्टून नुमा इंसान है। इसलिए कहते हैं इक्वल, तमाम अकदार को, तमाम कदरों और वैल्यूज को इक्वल बड़ा होना चाहिए, बराबरी के साथ आना चाहिए, इफरात और तफरीत नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं, मेरे पास मेहमान है तो मैं शॉर्ट करूंगा आज दर्स को, मैं कुछ तेजी के साथ एग्जाम्पल्स दे दूं और फिर इंशाल्लाह अगली निशस्त में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर बहुत सी मिसालें हैं इसकी। मसलन बाज औकात ये चीजें आती हैं, कुछ चीजों को अंडरस्टैंड कर, मसलन जहाद का टाइम हो रहा था, जंग के लिए निकल रहे थे और ये दूसरे खलीफे का दौर था, तो जो मुस्लिम सोल्जर्स थे, जितनी आर्मी थी, वो एक जगह इकट्ठे थे और रोमन और पर्शियन एम्पायर के साथ उनकी जंग होने वाली है, तो हर एक में एक जज्बा है, लड़ने के लिए तैयार है। मुबल्लिगीन ने आयतें पढ़ के और उनको जो है भड़का के बिल्कुल जज्बाती बनाया हुआ है खतीबू ने। और इतने में अजान नमाज का वक्त हो गया, तो खलीफा ने कहा देखो यार अजान दे दू, हया खैरुल अमल को ना दे, अजान मत देना, अजान में बयान मत करना, इसलिए कि देखें आओ अमल खैर की तरफ, तो हमको भी जहाद के लिए जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि बाज लोग कहे यार देखो अमल खैर तो नमाज है, छोड़ो जहाद को, मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज ज्यादा बड़ा अमल खैर है, जहाद के पीछे क्या जाना है। तो इस ख्याल से खलीफा साहब ने कहा देखो भाई इसको हटा दे, फिलहाल अजान से इसको रिमूव कर लें, इसलिए कि इससे मुसलमानों की जो जिहादी हरकत है वो जो है ना सुस्ती का शिकार हो जाएगी। लिहाजा कहा कि इसको हटा दें, तो क्या ये एक दुरुस्त उसकी तफसीर थी, तशरी थी, या वो खुद खलीफा साहब खुद कंफ्यूज थे वहां पर, खुद वो नहीं समझ पा रहे थे। और हकीकत ये है कि वो खुद नहीं समझ, उसने क्या समझा, उन्होंने समझा कि नमाज इज्तिमाई कामों के लिए रुकावट है, नमाज के अंदर नमाज की तरफ लोगों को बुलाना इज्तिमाई हरकत को सुस्त करेगी। मैं एक तहरीक चला रहा हूँ सियासी, मसलन मैं एक मजलूम की हिमायत के लिए मूवमेंट चला रहा हूँ, प्रोटेस्ट के लिए लोगों को बुला रहा हूँ, नमाज का टाइम होता है, मैं कहता हूँ यार नमाज छोड़ दो ना, ये ज्यादा अहम है। यानी खलीफा की सोच में ये बात आ गई, जबकि असल बात यह है नमाज की कबूलियत की शर्त इज्तिमाई जिद्दोजहद है, और इज्तिमाई जिद्दोजहद की कबूलियत की शर्त वो नमाज है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल कहाँ मिल सकती है कि शहीद मुतारी ने यहाँ इशारा नहीं किया, मैं इशारा करना चाहता हूँ, वो करबला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है, आ गया एन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रुख होके खड़े हो गए महमूद अयास, एन लड़ाई में तीरों के बारिश में नमाज का वक्त आ गया, तो रोक दो भाई, सारी कदरें बराबर ला रहे, देखें इसको पकड़ के उसको नहीं छोड़ना, उसको पकड़ के इसको नहीं छोड़ना। इज्तिमाई काम करता हूं तो इबादत में आदमी छोड़ दे, कह रहे मैं क्योंकि मेरे पास अहल वयाल है, बीवी बच्चे हैं, मेरे खानदान बड़ी है, पालने वाले लोग ज्यादा है, तो उसके पीछे मसरूफ हो जाए, दूसरे वाजिबात को छोड़ दे, इज्तिमाई वाजिबात को, समाजी वाजिबात को, सियासी वाजिबात को छोड़ दे, ये गलत है। इक्वल लेके जाना है, सबको लेके आगे बढ़ना है। तो उसकी एक एग्जाम्पल जो है शहीद ने यहाँ से दी, अलबत्त ऐसे बहुत सारे लोग भी थे, बाज लोगों ने मुत्तकी परहेजगार बनने के लिए, हुजूर पाक के यहाँ एक बड़ी कहानी है, बस ये वाकया सुनाऊं और आपकी जहमत तमाम कर दूं, कि खवातीन ने आके शिकायत की, शहीद मुतारी कोट करते हैं शायद इसी किताब के आखिर में, हम डिस्कस भी करें किसी चैप्टर में, खवातीन आके शिकायत करती हैं या रसूलल्लाह हमारे जो घर वाले हैं, मर्द हजरात हैं, शोहर हैं, बाप है, भाई हैं, वो कहते हैं ये तो घर आते कम है, कह रहे हैं क्या ये कहाँ पर है, कहाँ क्या मसरूफियत है इनके पास, कह रहे हैं ये तो सुबह शाम सजदों सजदे कर रहे हैं, इबादत में लगे हुए हैं, और ये कहते हैं जी हम बस हमने दुनिया को छोड़ दिया, जैसे मौला अली फरमाया तलक तो की तला था या दुनिया तलक तो की था, मैंने 3 दफा तुम्हें तलाक दिया, आप तो रजत वापसी भी नहीं आ सकती है, क्योंकि शिया फिका में भी है कि 3 निकाह और 3 तलाक हो जाते हैं तो उसके बाद चौथे मरतबा उस औरत से शादी नहीं कर सकता, मगर ये कि वो औरत किसी और के की मनकुहा रही हो और उससे डिवोर्स हो चुका हो, फिर हो सकता है, क्योंकि पनिशमेंट है ये एक तरह से हमारे लिए सुन्नत भाइयों के यहाँ एक निशस्त में। तो मौलाना फरमाया मैंने तुम्हें 3 दफा तलाक दिया है, यानी चौथी दफा मैं तुमसे शादी ही नहीं कर सकता। तो उन्होंने इसकी मतलब ये ले लिया कि दुनिया को तर्क करना और फैमिली को तर्क करना, उसकी जिम्मेदारियों को तर्क करना, सोसाइटी की जिम्मेदारियों को तर्क करना, और वो चले गए। हुजूर पाक ने उन्हें बुलाया और बड़ी सख्त उनकी सरजनिश की। उसके बाद ये हदीस मशहूर हदीस है, फरमाया ला रूहानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रूहबानियत नहीं है, यानी तारिक दुनिया का ये जो तुम्हारे बाबे शाबे सूफी शूफी पीर फकीर इस वक्त जो बैठे हैं, या हमारे ईसाई भाइयों के अंदर जो राहिब और राहिबाएं, देखो रूहबानियत राहिब राहिबाएं इसी एक ही खानदान से निकले हुए लफ्ज हैं, क्योंकि तजर्रुद की जिंदगी यानी गैर शादीशुदा रहते हैं इनके जो मजहबी उलमा हैं, जो मजहबी वॉलंटियर अपने आप को वक्फ कर चुकी नंदे या जो भी आप नाम दे दें, वो भी गैर शादीशुदा होती हैं। ये ऐसा नहीं है, इक्वल लेके चलो चीजों को, बराबरी के साथ लेकर चलना है, तमाम कदरों को उसका हक अदा होना चाहिए। मैं यहाँ पे इस दर्स को हम वाइंड